अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
वालेकुम सलाम
जी
भाई।
जी मौलाना साहब, अब आप शुरू हो सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है द लॉ ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस रिलेटिवली एक मॉडर्न टर्म है। इसका मतलब होता है टू रिकवर क्विकली द लॉस। किसी किस्म का लॉस अगर हो कोई भी, तो उसको जल्द रिकवर कर लेना, तैयारी कर लेना। तो नेचर में ये चीज मौजूद है, यानी फिजिकल चीजों में भी, बायोलॉजी में भी और ह्यूमन ब्रेन में भी। खुद क्रिएशन प्लान जो अल्लाह तआला का, उसके जरिए चीजों को ऐसे खुद रखी गई है। जैसे देखिए, फिजिकल चीजों में कुछ ऐसी दवाएं के तो फिर वैसी कुछ हो जाएगी, मोड़ेंगे तो फिर वैसी कुछ हो जाएगी, खींचेंगे तो फिर वैसी कुछ हो जाएगी। जैसे स्पंज है, रबर है और इलास्टिक है, तो अपनी पहली हालत पर बहुत जल्द वापस आ जाती है। इसको कहते हैं रेजिलियंस। ऐसी देखिए, बाजी में आदमी का जो बॉडी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डैमेज होगा, एक आंख आदमी की चली गई, एक आंख बाकी है, तो एक आंख से वो सारा काम कर लेता है। पहले जमाने में जो आदमी मजदूर होते हैं, उनका आता था कि डिसेबल्ड कहा जाता था उसको, डिसेबल्ड। तो पता चला कि डिसेबल्ड नहीं है वो, तो उसको कहा जाने लगा फिजिकली चैलेंज्ड। ये भी मालूम हुआ कि भी ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी के अंदर कोई चीज अगर किसी वजह से लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो बॉडी के अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो उसको पूरा कर लेती है। इसे अब जो लफ्ज यूज होता है वो होता है डिफरेंटली एबल। एक एतबार से अगर उसके अंदर कमी आई तो किसी न किसी एतबार से नेचर उसको पूरा कर लेती है। यह डिफरेंटली एबल। तो यही चीज ब्रेन के लिए है, और ज्यादा सुपीरियर फॉर्म। इंसान जो ब्रेन है, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा सुपीरियर चीज होती है पूरे नेचर में। तो नेचर में तो ब्रेन में ये सिफत बहुत जबरदस्त होती है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसका नाम है डॉक्टर ब्रूस मैकइवन। वो प्रोफेसर है यूएसए की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में। इस सब्जेक्ट उसकी किताब है। इस किताब में वो कहता है कि द ब्रेन इज वेरी रेजिलियंट। द ब्रेन इज very resilient, give it a chance and it will make every effort to repair itself. The adipic brain hai wo bahut zabardast taqat hai uske andar resilience ki, uske andar koi kami aa jaye तो आप मौका दीजिए तो آج ہمارے ہاں جو پیپر نکلتا ہے مسلمانوں میں, تو ایک پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا ہے آج کے ایک مشہور مولانا کا, ایک مشہور عالم کا, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری بھی اسلام کو بدنام کرنے میں پوری طرح سرگرم ہے. آرٹیکل کا خلاصہ یہ ہے کہ فلم انڈسٹری جو ہے, فلم انڈسٹری اسلام کو بدنام کرنے میں پوری طرح سرگرم ہے. اب دیکھیے, یہ ان کا مائنڈ جو تھا فلم کے بارے میں نیگیٹو تھا. فلم کو سمجھتا تھا کہ بھی دشمنوں کی کوئی سازش ہے, تو اپنے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ان کو یہی نظر آیا کہ فلم انڈسٹری اسلام کو بدنام کر رہی ہے. اچھا, میرا حال یہ ہے کہ میں کوئی نفرت کے کسی سے, کسی ہیٹ نہیں, کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں میرے اندر. تو میں نے کیا سمجھا اس سے, میں نے سمجھا کہ ہمارے جو میگزین یا اخبار ہوتے ہیں ان کی ریچ تو بہت ہی کم ہے, اور فلم انڈسٹری کی بہت دور تک ہے, بہت دور تک ہے, ملین ملین لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو کیا کہ فلم انڈسٹری آپ اس کو بدنام کرنا چاہیں, ہم یہ کہیں کہ اس کی پبلسٹی کر رہی ہے, پبلسٹی کر رہی ہے, جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو وہاں پہنچا رہی ہوں. اب دیکھیے, میں نے سوچا کہ آدمی کا جو مائنڈ ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ نے پڑھا دیا تو پڑھ لیا, وہ مائنڈ خود سے سوچتا ہے کسی بھی بات کو. یہ ناممکن ہے کہ مائنڈ جو ہے کوئی بات اس کے اس میں پڑھے اور سوچے نہیں, ہو ضرور سوچے گا, یہ سوچے گا. اور جتنا کسی فلم میں اسے دیکھا ہے کیا وہیں رک جائے گا, وہ بائی نیچر وہ چاہے گا کہ میں اور جانوں اور جانوں اور جانوں. نتیجہ کیا ہے کہ فلم انڈسٹری نے چاہے کسی بھی مقصد سے اسلام کا نام لیا ہو, لیکن بہت سے لوگوں کو اسے ایکٹیو کر دیا کہ وہ اسلام کے بارے میں جانے 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 اپنے اس طرح اسلام کی یعنی کچھ بڑی اشاعت ہو جائے گی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور نیچر نے ہمارے اندر یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ دنیا میں دیکھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیمج ہوتا ہی رہتا ہے. یہاں پر کمپٹیشن ہے, یہاں پر فریڈم ہے, یہاں پر چیلنجز ہیں, اس بنا پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے کہ کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے, تو اس کے بعد کیا ہو, وہ نیچر ہی میں خود اس کا جواب ہے کہ خود تمہارے اندر پوٹینشلی یہ صلاحیت موجود ہے کہ تم برین کو اپنے مائنڈ کو چانس دو. چانس دینے کے معنی کہ کوئی اچھی کام ہو تو اس سے اس کو ریکارڈ پڑے. جب ریکارڈ یہ ہے کہ آپ نفرت کرنے لگیں, آپ غصہ آ جائے, آپ کو آپ بھڑک اٹھو, آپ بلا سوچ سمجھے کوئی اسٹیپ لے لیں, اس سب رکاوٹ ڈالنا ہے. اس سے میرا تجربہ یہ ہے کہ اصل مجھے غصہ آ گیا, غصہ ہر آدمی کو آتا ہے, تو جب غصہ تیز آ جائے مجھے تو میں کیا کرتا ہوں, ایک دم چپ ہو جاتا ہوں, کچھ بولتا ہی نہیں, کوئی جواب نہیں. تو جب میں چپ ہو جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, گویا کہ میں نے اپنے مائنڈ کو چانس دیا کہ وہ ریکور کرے. مینج کرے جو بہت تھوڑی دیر میں ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ پیسفائی ہو جاتا ہے. اب اگر میں غصے کو بھڑک اٹھوں, بولوں, देश देश ग्रुप बने गया कि अपने माइंड को चांस नहीं दिया। ये मेरा बग देखा है कि जैसे गुस्सा आएगा मैं चुप हो जाऊंगा, तो चुप होकर के मैं अपने माइंड को चांस देता हूं कि वो अपने आप पेसिफाई कर ले चीजों को, और वो कर लेता है। देखिए यही बात नेशन के लिए भी है। नेशन एक बहुत ही खुली मिसाल है जापान की। आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर दो एटम बम पे आ गए, बहुत जबरदस्त उसका तबाही हुई। लेकिन क्या हुआ वहां पर, वर्ल्ड वॉर के बाद उस वक्त जापान में जो किंग था हीरो, तो उसने एक स्पीच दी कि वी हैव टू सफर द अनसफरेबल। मतलब ये कि ये जो नुकसान हुआ हमको, हम उसको गुस्से को भुला देना है, भुला करके हमें रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है जापान को। इसको उसने कहा कि वी हैव टू सफर द अनसफरेबल। वहां प्लान बनाया गया एजुकेशन का, साइंटिफिक एजुकेशन का। तो आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान की हैसियत थोड़ा वॉर की नहीं थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जल्दी उसकी हैसियत इकोनॉमिक सुपर पावर की हो गई। ये था कि उसने चांस दिया, उन्होंने अपने माइंड को चांस दिया तो सोचे, फिर से सोचे, फिर से सोचे, फिर से प्लान करे। मुसलमानों का मामला है कि उन्हें ये सब बातें मालूम ही नहीं, मुसलमान से फर्क ना जानते। कोई फिल्म आ गई बड़क उठते, कोई कार्टून सब सब गए थे बड़क उठते, कोई किताब छप गई थी तो बड़क उठते। हर बात जब कोई ऐसी बात होती है जो उनके लिए कुछ अनप्रेजेंट हो, उनके जोक के खिलाफ हो, तो पर फर्क उठेंगे। तो फर्कने का मतलब क्या हुआ, वो गया कि अपने माइंड को ये चांस नहीं दे रहे हैं कि वो सोचे और मामले की री एग्जामिन करे और फिर उसकी रिप्लानिंग करे, इसका वो चांस ही नहीं दे रहे। मैं सोचता हूँ कि मुसलमानों के रेफरेंस में लाफ रिलीजियंस की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी मैं एक मिसाल दे सकता हूँ आपको, कई मिसाल बल्कि मसल देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपना मिशन शुरू किया 610 ईस्वी में, तो वहां उस वक्त जारी वो उसका कवाली निजाम था, ट्राइबल सिस्टम। तो ट्राइबल सिस्टम में तो आप जानते हैं कि बस बात बात पर तलवार उठती थी और लड़ने को खड़े होते थे। तो ऐसा वहां पर हुआ और सुला को कई बार यानी न चाहती हुई भी ड्राइव में बैटरी फील्ड में जाना पड़ा। और फिर आखिर में देखिए ऊद की लड़ाई हुई, ऊद की लड़ाई में 70 सहाबा को उन्होंने हलाक कर दिया, 70 सहाबा। अब गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह को कितना बड़ा शक लगा होगा, खुद रसूलुल्लाह को भी पत्थर मार के जख्मी किया उन्होंने, कितना शक लगा होगा। लेकिन कितना बड़ा वाक्य है ये, रसूलुल्लाह इससे बटअप नहीं हुए, इससे उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं हुआ, उन्होंने री एग्जामिन किया। री एग्जामिन करके आप देखिए कि उसके बाद सुलह कर ली उन्होंने। जब आपने देखा कि ड्राइव बार बार हो रही है और चीजें वैसी रहती है, मैं जो थी बिल्कुल यूनिलैटरल कंडीशन के साथ हुई थी। तो आपने इस पर राजी क्यों हुई? आपको आपने ये पकड़ा, ये इस बात को समझा कि बैटल फील्ड में जो चीज डिसाइसिव होती है वो तो तलवार है। हमारे पास तलवार कम है, हमारे पास आदमी कम है, उनके पास भी ज्यादा है। अब सुलह के माने क्या थे? सुलह के माने थे कि आपने मुकाबले का मैदान बदल दिया, मुकाबले का मैदान बदल दिया, यानी आजादी के मैदान में लाए मुकाबले को। अब मुकाबला जो है शिर्क की आजादी और तौहीद की आजादी, इसके बीच में लोगों को मौका होगा कि कंपेयर करके समझे कौन ठीक कौन नहीं ठीक है। तो इससे पहले जो था वो बैटल फील्ड में मुकाबला होता था, वहां वाजे तौर पर दूसरी पार्टी जो थी उसको अपर हैंड हासिल था। लेकिन आजादी के मैदान में जब आप लाया तो शिर्क के मुकाबले में तौहीद को अपर हैंड मिल गया। यहां तक के आप जानते हैं कि दो साल के अंदर अंदर पूरा वहां पिक्चर एकदम बदल गई, बड़ी तादाद लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये है जो लास्ट रेजिलियंस है वो फिजिकल वर्ल्ड में भी है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी है, ह्यूमन वर्ल्ड में भी है, हर जगह है। अब दूसरा देखिए प्लांट प्लांट किंगडम या उसमें देखिए एक दरख्त है, उस दरख्त को आप इस तरह काटिए कि स्टेप से काटते हैं लेकिन नीचे की जड़ बाकी रहे, स्टेप से काट कर उसका पूरा आप अलग कर लें। अगर उसकी जड़ें जमीन में बाकी है वही जड़ों में फिर से शाखें निकलेंगे, फिर से स्टेप बनेगा, फिर से ब्रांचेस निकलेंगे, फिर से पत्तियां निकलेंगे। यह है रेजिलियंस जो अपने लाश को फिर गेन करता है, उसको फिर गेन करता है। तो इंसान का बॉडी तो अपने आप जानते हैं कि लाश को गेन करता है, आप हर आदमी जानता है कि चोट लगती है, कहीं खून निकल आता है, कहीं बीमारी होती है, कुछ होता है, लेकिन आप थोड़ी देर में आदमी ठीक हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ब्रेन और ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत बॉडी में बॉडी जो है वो रिकवर करता रहता है। लेकिन जहां तक सोशियो पॉलिटिकल लाइफ का मामला है, नेशनल लाइफ का मामला है, वहां आपको अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा, वहां पर अपने आप ही हो जाएगा। तो सिर्फ इतना अगर करें आप माइंड को डिस्टर्ब ना होने दें, उसको प्रवोक ना होने दें, उसको फैसले से बचाएं, तो माइंड खुद ही खुद काम करता है। यानी बिल्कुल आप पॉजिटिव अगर हो जाए, जब कितने सख्त हालात हो, कितने सख्त हालात हो, अगर आप पॉजिटिव हो जाए तो माइंड जो है आपको रास्ता बताएगा, माइंड आपको लीड करेगा। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो भड़क उठना, प्रवोक हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। इसके एक मिसाल देखिए वहां हुई थी जब मैं गया था अमेरिका, एक मुकाम पर ऐसा हुआ कि एक मस्जिद थी, वहां पर हमारी स्पीच थी। जब मैंने स्पीच दी तो वहां पर एक मुस्लिम नौजवान जो है भड़क उठा, लगा चीखने चिल्लाने में कि आपने रसूल अल्लाह का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यू प्रॉफिट यू साइटेड द प्रॉफिट 10 टाइम्स, बट यूनिवर्स से चलना है सर, अब इसी को लेकर वो चुप चल रहा है। तो वहां मैंने क्या किया, मामले को रिलेटेड बना दिया एक तरफा। मैं स्टेज पर चुपचाप बैठ गया, कोई बोल ही नहीं। अब वो सिंह रहा चिल्ला रहा स्टेज तक आ गया, वो स्टेज तक चुपते चलाते हुए। तो अगर मैं उसको बायलेटरल पढ़ लेता, वही बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, मामला पंजाब कहाँ तक पहुंचा, आगे जाता कहाँ तक। लेकिन जब मैंने उसको रिलेटेड बना दिया, जो वो ये भी उसी के विषय है, तो मामला खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के जितने मिसाइल हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, कम्युनिटी के लेवल पर हो, नेशन लेवल पर हो, सब में जड़ की बात यही है कि मुसलमान जानते ही नहीं लॉ ऑफ रेजिलियंस को, जानते ही नहीं। मैं तो कभी किसी मुसलमान को मजलिस में सुना नहीं ये बात कि अपने माइंड को एक चांस दो, माइंड खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। मैं किसी मस्जिद में सुना ये बात, मैं मदरसे में सुनी, मैं किसी जलसे में सुनी, मैं किसी किताब में पढ़ी। तो ये नेचर ने, खुद क्रिएटर ने एक बहुत बड़ा इम्कान रखा है, लेकिन मुसलमान उससे बेखबर है, इसलिए वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो मैं सोचता हूँ कि मुसलमानों की इस्लाह के लिए हमें करना को बेखबरी के तोड़े, जो चीज ऑलरेडी मौजूद है, वही मुसलमान को जानते नहीं, तो हम ऐसा करें कि उसके जानने वाले बन जाए। यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था एक मकाम पर, तो हर साल जब जाता था गणेश चतुर्थी का जुलूस निकलता है, इंडिया में निकलता है, तो हर बार वहां प्रसाद होता था, हर बार। तो हमारे एक साथी वहां थे, उन्होंने कहा कि तुम रोक टोक करते हो, इसे फसाद होता है, कि रोड बंद दो, इधर जाओ, करो नारा मत बजाओ, बाजा मत बजाओ, ये सब रोक रोक करते, इससे फायदा होता है। आप सिर्फ ये कीजिए कि रोक रोक न कीजिए, बात आने दीजिए उनको, वो नारा लगाए, बाजा बजावा, कुछ भी करें, कुछ जाने दीजिए। तो चुनाचा उस साल लोगों ने वहां के मस्जिद के इमाम साहब से वो समझाया, तो सब लोग चुप हो गए, रोड पर नहीं आए। अरे रोड पर आते तो रोकने के लिए, कोई मुसलमान रोड पर आई नहीं। तो ये क्या हुआ, जो बोलता बोलता वो गुजर गया, नारा लगाता वो गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप यानी मुसलमानों को सिर्फ ये समझाइए कि लॉ ऑफ रेजिलियंस को जानो, अपने माइंड को एक चांस को सोचने का, तू खुद ही रास्ता निकाल लेगा, वो खुद ही रास्ता निकाल लेगा। ये क्रिएटर का बहुत बड़ा बहुत ब्लेसिंग है कि उसने इस तरह का हमारे अंदर रख दिया, जिस तरह दरख्त को अगर काट दिया जाए तो जड़ फिर से एक नया दरख्त निकाल देती है। ऐसे इंसानी जिंदगी में कोई लाश पेश आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसे पोटेंशियल है इंसान के अंदर कि फिर वो दोबारा खड़ा रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही एप्लीकेबल है ये चीज मुसलमानों के हालात में। मुसलमानों ने कहीं भी वो नहीं किया जो मुसलमान ने किया था, मौजूदा ने या मौजूदा ने जापान ने उसे दोहराया है। तो किसी भी मकाम पर मेरे नजदीक मुसलमानों ने ये हिकमत ये विजडम अख्तियार नहीं की। तो ये थे आज के सवाल।
جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، آپ نے بتایا کہ ریزیلینس کا مطلب ہے نقصان کی فطری تلافی ہے، تلافی کر دیتا ہے، اور دوسرا آپ نے بتایا ریزیلینس لا آف نیچر ہے اور یہ فزیکل اور اینیمل اور ہیومن ورلڈ میں موجود ہے، اور ریزیلینس جب آپ میں آتا ہے جب آپ جو ہے پازیٹیو تھنکر ہو اور دماغ کو ایکٹیو رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، میں اب اس کو کنورزیشن موڈ میں ڈالتا ہوں، پھر لوگ جو ہیں اب سوال کریں، آپ اپنا پہلے نام بتائیں اور پھر مقام کا نام بتائیں، پھر سوال کیجیے گا۔ جی اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔
میرا نام عبد الرفیق ہے، پاکستان سے بول رہا ہوں۔ آپ مسلمانوں نے جہاد کے بارے میں یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو ختم نہیں کر پائے گا۔ اب جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ قتال وغیرہ کم کرو، یہ سوسائڈ بامبنگ بھائی کرو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کہتے ہیں کہ جہاد کا ذکر بند کرو، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔
اسی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ عادل کا عادل بھی اس کو نہیں روکے گا، تو سوال ہے کیا عادل کو آپ جاری کریں گے؟ اگر حاکم عادل ہے تو اسے آپ ڈرائی کریں گے، اسے قتال کریں گے؟ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی ایک ایسا جہاد کا ایسا مطلب کرنا ہوگا کہ عادل ہو تب بھی جاری رہے وہ، تو پوائنٹ اس کو بڑا قتال نہیں ہے،
جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال پلیز مولانا صاحب۔ میرا سوال ہے کہ ریزیلینس جو ہے کس قسم کے آدمی میں، پہلی کیا چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ ریزیلینٹ بناتی ہے؟
دیکھیے कोई दूसरी कंडीशन नहीं है।
दोनों मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में हम देखते हैं कि वेस्टर्न नेशंस जो है बहुत ज्यादा रेजिलिएंट है, उसकी वजह क्या है? अब जैसे अभी हाल में यहाँ पर तूफान आया और उस तूफान की से जो है बहुत जल्द जो है ये लोग रिकवर कर गए। ऐसे कई तूफान आते हैं यहाँ पर, कटरीना हुआ या 9/11 की बॉम्बिंग हुई, ये सब चीजों से वो फौरी यानी कम अरसे में वो दोबारा फिर हस्बे हाल मामूल पे आ जाते हैं। तो की वजह क्या है कि वेस्टर्न नेशन इतना ज्यादा रेजिलिएंट क्यों है?
देखिए इस पर मैंने बहुत सोचा है, इसको सिर्फ एक है, वो है साइंटिफिक एजुकेशन। मुस्लिम कंट्रीज में अभी भी लोग जानते हैं नहीं कि साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, अभी भी सब नहीं जानते। और सब को जानता है तो कि कोई जॉब के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे, लेकिन वेस्टर्न नेशन जो है 300 साल से वहां पर साइंटिफिक एजुकेशन हुई, साइंटिफिक थिंकिंग हुई, तो साइंटिफिक डिस्कवरीज में और साइंटिफिक थिंकिंग में उनकी नेशन बनी है। इसकी वजह से वो बोले यही लोग दिखे, ये जो रेनेसांस से पहले यूरोप ऐसा नहीं था, जैसे आज है वो। ये जो रेनेसांस के बाद यानी साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद ये बात हुई है, तो मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी आज भी कहीं भी साइंस की अहमियत नहीं है। बहुत से बहुत ये बात कंट्रीज है चाहते हैं कि हम एटम बम बनाए, एक बिल्कुल अमेरिकी के मकान हरकत है कि साइंस के माने एटम बम बनाने के लिए यानी अपने को इसका भी बनाया कि एटम बम बना सके। कुछ इंडिविजुअल है वो प्रोफेशनल के लिए, लेकिन साइंस को जिंदगी में जो दर्जा मिला वेस्टर्न कंट्रीज में वो मुसलमान में कभी भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला हुआ है। तो साइंस देखे जो जिसको हम साइंस कहते हैं उसको दूसरा नाम उसके लिए एग्जैक्ट साइंसेस, एग्जैक्ट साइंसेस से एग्जैक्ट थिंकिंग आती है, एग्जैक्ट साइंसेस से एग्जैक्ट थिंकिंग आती है, ऑब्जेक्टिव आती है, रियलिस्टिक अप्रोच आता है, उसी के सब यानी उसी का सब सब हुआ है, मजाहिर है उसी के वजह से सब हो रहा है। मुसलमानों में जब तक एजुकेशन नहीं पड़ेगी साइंटिफिक एजुकेशन तब तक ये सूरत प्राप्त रहेगी।
जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, जब ये टॉपिक सामने आया तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो हजारों आर्टिकल हैं हाउ टू बी रेजिलिएंट। यानी एजुकेशन का तरीका इतना ज्यादा आम है, हर चीज जो है बड़ी साइंटिफिक है। आपने जितनी बातें बताई वो सब बातें इसमें मौजूद हैं कि 10 वेज टू बिकम मोर रेजिलिएंट, इसमें बताया कि बी पॉजिटिव थिंकर, नो योर स्किल्स, बी काम, डोंट गेट एंग्री। तो ये सब चीजें जो है ये लोग न सिर्फ उसको डिस्कवर किया बल्कि लोगों में खूब फैलाया। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं कि जो है ये जो साइंस एजुकेशन है, साइंटिफिक थिंकिंग है जो इन लोगों में डेवलप हुई है और इसको चीजों को जो है लाइटली लेते हैं और फिर उसको कलेक्टिवली फिर अमल में लाते हैं।
देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में हजारों हजार लोग पैदा हुए जिन्होंने ये बातें कही। मुस्लिम दुनिया में मैं आज तक अकेला ही हूँ, मेरे सवा एक भी नहीं बता सकते आप मुस्लिम दुनिया में जो ये तो बातें करता हो, यानी उलमा दरगाह विषय भी नहीं जानते नहीं कहते। मुस्लिम पूरी मुस्लिम दुनिया में मैं अकेला हूँ जो इस बात को जानता और कहता है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में हजारों हजार लोग हैं।
जी बिल्कुल,
इस पर पैदा हो गया
है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस टॉपिक को वो इस्लामिक टॉपिक भी नहीं समझते।
कतन नहीं। वर्ल्ड में कोई दूसरा नाम पहन सकते आप जो इस तरह की बातें करता हूँ जो मैं करता हूँ, जबकि
और कोई सवाल प्लीज।
मेरा नाम सवाल है कि इस वक्त मुसलमानों को जितनी भी परेशानियां हो जितनी भी हो हैं, वो कोई भी कौन जो है मुसलमानों को मार नहीं रही है, जिनके पास लोग जवाब कर रहे हैं वो भी उनको मार नहीं रहे हैं। जैसे दुनिया में साइंस के इंकलाब के बाद जैसा दौर आ चुका है, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता, मजहब के मामले में तो मुसलमान मजहबी आजादी लोगों को हासिल है, इसी तरह मुसलमानों को भी हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुसलमान जितने परेशानियों में गिरफ्तार हुई या अपनी हिमाकत की वजह से हैं, और उसको इन्होंने नाम दिया है साजिश का, न वो मुस्लिम कंट्री नहीं चाहते और न वो उनका ये कंसर्न है कि मुसलमानों को मारे, जो मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा करें, जो खुद हमने अपने लिए मसाइल पैदा किए हैं और मसाइल में हम गिरे हुए हैं, और उसको नाम दे रहे हैं जिहाद का। ये लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, इसलिए हम डरते हुए, हालांकि कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं करता, ये हमारी अपनी ही गलत सोच है जिसने हमें ये दुनिया में
जी
परेशान कर रखा है, और हम खुद अपनी जमातों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से और अपनी इस्लामी गलत तहकीकात की वजह से
सही बात
मसाइल में पड़े हुए हैं।
अगला सवाल प्लीज।
देखिए एक बात मैं ऐड करूंगा कि मुसलमानों के सब पता नहीं कि ये जब एनमिटी खत्म हो गया, दौर अदावत खत्म हो चुका, जब से इंडस्ट्री बढ़ी है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया, हर आदमी के पास काम है। पहले जमाने में कोई काम ही होता था, एग्रीकल्चर था सिर्फ, वो भी बहुत ही लिमिटेड, काम नहीं था, तो दुश्मनियां भी करते थे, नुकसान भी करते थे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इतना काम बढ़ा दिया, इतना काम बढ़ा दिया है कि किसी को फुर्सत नहीं कि दूसरे के खिलाफ अदावत करे, साजिश बढ़ाए। ये बिल्कुल नया एज है जिससे मुसलमान बिल्कुल बेखबर है, सारे मुस्लिम दुनिया में कुछ जानते ही नहीं कि एक नया एज है। ये बेखबरी मुसलमानों का मसला है, और कोई मसला नहीं। जी कौन सा है?
अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर 2 हफ्तों के बाद ये प्रोग्राम होगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम।